हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी ने अपने गुस्से में विधिक को काफी कुछ भला बुरा कह दिया, जिसका अंजाम क्या हो सकता था इससे अमन अच्छी तरह वाकिफ था। अमन ने अपनी टीम से बात करके शहर की सिक्योरिटी बढ़वा दी थी। विधिक को रोकने के लिए अमन अब खुद उससे बात करने के बारे में सोच रहा था। विधिक को कॉल मिलाने से पहले अमन ने खुद से कहा, आई नो तुम मेरे कॉल का ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, पर तुम्हें रोकने के लिए, फिलहाल के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अमन ने उसी वक्त विधिक को कॉल किया तो वहीं विधिक ने अमन का कॉल आता देखा तो वो मोबाइल को जलती निगाहों से घूर रहा था। अमन को लगा विधिक उसका कॉल पिक नहीं करेगा, लेकिन विधिक ने उसका कॉल पिक किया। विधिक अभी भी गाड़ी में था, उसने ब्लूटूथ ऑन किया और कॉल पर कहा, सब कुछ ठीक करने के लिए फ़ोन किया है ना तुमने?
नहीं, वो एक्चुअली क्या हम मिल सकते हैं?
तुमने जो भी प्रपोजल भेजा था मैंने उस पर गौर किया था, मुझे उस पर बात करनी है। अमन ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ठीक है, बट आई नीड टाइम, मैं इस वक्त बाहर हूँ और मुझे तुम्हारे ऑफिस पहुँचने तक में 2 घंटे लगेंगे, शायद तब तक रात भी हो जाए, देर रात। विधिक काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से बात कर रहा था। आई डोंट केयर, तुम जब भी आओ मुझे आधे घंटे पहले कॉल कर देना, मैं भी आ जाऊँगा, अमन ने जवाब दिया। पूरी बात होने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। विधिक से बात करने के बाद अमन ने खुद से कहा, तो मैं सही था, तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। तुम्हारे बात करने के लहजे से साफ था कि तुम्हारे अंदर इस वक्त गुस्से की आग कितनी भड़की हुई है विधिक राणा। अमन ने उसके बाद फिर से लावण्या को कॉल किया और कहा, लवी मेरी उससे बात हो गई है, वो मिलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे आने में काफी रात हो जाएगी, अभी 9 बज रहे हैं, बस कुछ घंटे के लिए सब संभाल लो। हाँ हमने देख लिया है, शहर के मॉल से लेकर बाकी घूमने की जगह जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है उन्हें इमरजेंसी अलर्ट के साथ बंद करवा दिया है। डोंट वरी, वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, लावण्या ने बताया। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। उसने फिर अपने मोबाइल स्क्रीन को ऑन किया और उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखने लगा। शहर में कुछ विवादित घटनाओं और रहस्यमय चीजों के चलते 24 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है। ये सब काफी इमरजेंसी में हुआ है, इसलिए आप सभी शहरवासियों से निवेदन है कि कोई घर से बाहर ना निकले। अगर कोई भी व्यक्ति सस्पिशियस गतिविधि करते हुए पाया गया तो उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑर्डर सीधा CM की तरफ से पास हुआ है। न्यूज रिपोर्टर न्यूज पढ़ रहा था। उसे देखकर अमन ने राहत की सांस ली। इमरजेंसी में टीम से जितना हो सका उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ विधिक ने गाड़ी में रेडियो ऑन कर रखा था। उसने भी यही न्यूज सुनी तो उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। मुझे इस शहर से कोई मतलब नहीं है, चाहे तो सिक्योरिटी डबल टाइट कर दो, मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी बटरफ्लाई है और उससे जुड़ी चीजें। तुमने मुझे कर्ज किया था ना बटरफ्लाई, इसके लिए तुम जिंदगी भर पछताने वाली हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं तड़पूंगा, बल्कि तुम अपने अपनों की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। आई बेट यू तुम खुद आओगी मेरे सामने और माफ़ी मांगोगी कि तुमने ऐसा क्यों कहा, विधिक ने खुद से कहा और उसके बाद किसी को कॉल मिलाया। विधिक ने कॉल पर कहा, बस 10 मिनट, मैं 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। सर सारे इंतजाम हो गए हैं और मैंने लोकेशन भी आपको भेज दी है, मैंने लाइव लोकेशन भेजी है, इसलिए आपको मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, कैमरा सिर्फ 10 मिनट के लिए हैक हुए हैं, आपके पास इतना ही टाइम होगा, आपको जो करना है वो इतने टाइम में ही करना होगा। और सामने वाले आदमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विधिक ने कॉल कट कर दिया। उसने उस आदमी की भेजी हुई लोकेशन को अपनी गाड़ी के GPS में सेट किया। विधिक राणा इज इन एक्शन, अब तक मैं शांत था तो तुम लोगों को लगा कि मुझे कुछ भी कह दोगे या मुझे हल्के में ले लोगे। मेरे चुप रहने का कारण था बटरफ्लाई, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने खुद मुझे मजबूर किया है। चलो इसी बहाने तुम लोगों को भी पता चलेगा कि विधिक राणा क्या चीज है। बोलते हुए विधिक ने अपनी गाड़ी GPS में सेट की हुई लोकेशन की तरफ बढ़ा ली। दूसरी तरफ अमन घर के लिविंग रूम में बैठकर अपने लैपटॉप में शहर के CCTV फुटेज को देख रहा था। वो काफी देर से स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। थैंक गॉड अब तक सब ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि मिस्टर दत्त ने पूरी टीम को इस काम में लगा दिया। एक बार सब ठीक हो जाए फिर एजेंसी जाकर सबको स्पेशल थैंक्स बोल दूंगा, अमन ने खुद से कहा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसकी नजरें लगातार लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। इस बीच आंशी बाहर निकलकर आई, उसके हाथ में एक बैग था जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान था। आंशी का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। वहां से निकलने से पहले आंशी ने एक नज़र अमन की तरफ देखा
और फिर अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। आंशी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हो? अमन ने सीधे सीधे पूछा। एक ऐसी जगह जहाँ मेरी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आंशी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जाने के बाद वो रुक जाएगा? मैं उसी के पास जा रही हूँ, शायद फिर वो रुक जाए, आंशी ने भारी आवाज में कहा। वो अमन के सामने अपने आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके आंख से आंसू का कतरा बह ही गया। आंशी को रोते देख अमन ने धीमी आवाज में कहा, मैं शायद गुस्से में तुम पर कुछ ज्यादा ही रूढ़ हो गया था। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम मुझे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हो, पर मैं ही नहीं समझ पाती। ये बात नहीं है कि मैं समझना नहीं चाहती या खुद को स्ट्रांग नहीं करना चाहती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता है। मैं वो सब वापस फील नहीं करना चाहती जो मैंने विधिक के साथ रहते हुए महसूस किया था। मैं उस डर से वापस नहीं गुजरना चाहती, बस यही वजह है कि आंशी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इससे आगे वो कुछ भी कहती तो उसका रोना निकल जाता और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ पल की चुप्पी के बाद आंशी ने बात बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी बहुत डिसअपॉइंट किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने हर कदम पर सच में मेरा साथ देने की कोशिश की है, पर मैं अपनी वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुसीबत में नहीं डाल सकती। आंशी ने अपनी तरफ से अमन को गुड बाय कह दिया था। उसने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और वहाँ से जाने को मुड़ी। आंशी ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि अमन ने जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। अब क्या, इतनी सी बात के लिए छोड़कर चली जाओगी? जानता हूँ गुस्से में थोड़ा चिल्ला दिया था, अगर मैं तुम्हारी नादानियाँ प्यार से झेल सकता हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा मेरे गुस्से को झेलना होगा, अमन ने बिल्कुल सॉफ्टली कहा। उसका सिर आंशी के कंधे पर था। अब तक आंशी ने अमन के सामने खुद को काफी कंट्रोल कर रखा था, लेकिन जैसे उसने उसकी बातें सुनी आंशी जोर जोर से रोने लगी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम सब लोगों को मुसीबत में डाल दिया ना, आंशी रोते हुए बोली। शश शश शश, अमन ने आंशी से अलग होकर कहा। उसने उसके आंसू पोंछे और अपने दोनों हाथों से आंशी का चेहरा पकड़कर कहा, आगे से ऐसा कभी मत बोलना, तुमने काफी कुछ सहा है आंशी, उसके बाद किसी का भी टूटना जायज है। विधिक तुम्हें अच्छे से जानता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस बस उसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया। बोलते हुए अमन ने महसूस किया आंशी को बहुत तेज फीवर है, और ऐसा तभी होता था जब वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाती थी। अमन ने फिर आंशी के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में गिल्ट था और वो कांप रही थी।
ठंड लग रही है, अमन ने पूछा, तो जवाब में आंशी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अमन ने आंशी के हाथ से उसका बैग लिया और उसे गोद में उठा लिया। अमन आंशी को कमरे के अंदर लेकर आया, उसने उसे बेड पर लिटा दिया। आंशी का सिर अमन की गोद में था। अमन ने अपना मोबाइल लिया और जस को फुटेज पर कड़ी निगरानी रखने का मैसेज किया। उसके बाद उसने आंशी से कहा, मुझे 10 मिनट दो, बस मैं अभी आया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, आंशी ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारा फीवर बढ़ रहा है, अमन ने जवाब दिया। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। अमन ने आंशी के लिए जल्दबाजी में सूप बनाया और कुछ और खाने की चीजें और दवाइयों के साथ वापस रूम में गया। आंशी अब तक जाग रही थी। अमन ने उसे खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने के बाद कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आगे से कुछ भी गलत सोचने या करने से पहले मेरा ख्याल कर लेना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। अमन ने उसे बाहों में लिया और सुलाने लगा। कुछ ही देर में आंशी को नींद आ गई, तो वही अमन अभी भी विधिक के कॉल का इंतजार कर रहा था। रात के 12 बज गए थे, पर अब तक विधिक ने कॉल नहीं किया था। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मिलने आओगे विधिक राणा, अमन ने अपने मन में कहा और फिर आंशी के चेहरे की तरफ देखा। देखना, एक दिन तुम्हें मैं एक सेफ और सिक्योर लाइफ देकर रहूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे, अपनी बात कहकर अमन ने आंशी के फोरहेड पर किस किया। अमन आंशी के पास आकर बैठा ही था कि उसके पास विधिक का कॉल आया। अमन ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आंशी सोई हुई थी तो अमन ने कॉल वहीं पर पिक किया। उसके कॉल पिक करते ही विधिक ने दूसरी तरफ से कहा, अब तक जाग रहे हो, वो भी बटरफ्लाई जैसी वाइफ होते हुए, इट्स अ गुड साइन कि तुम दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाते। विधिक की बात सुनकर अमन ने आईज रोल करके कहा, काम की बात करें, कब तक पहुंच रहे हैं आप? बस आधे घंटे में, चलो मिलते हैं फिर, बोलकर विधिक ने कॉल कट कर दिया। वहीं विधिक से बात करने के बाद अमन ने खुद से कहा, स्ट्रेंज, पिछली बार इसकी आवाज में गुस्सा था और अब एक सुकून। इस इंसान के सुकून का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं। अपनी बात कहकर अमन वहां से जाने को हुआ, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो आंशी थी। आंशी खड़ी हुई और उठकर कहा, विधिक से मिलने जा रहे हो ना? अमन ने हाँ में पलकें झपकाई। आंशी ने आगे कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? पागल हो, वो फिर तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो गुस्से में पागल हो जाएगा। चिंता मत करो, उसने कुछ नहीं किया। चंडीगढ़ के हर कोने की सिक्योरिटी काफी टाइट है, उसने कुछ नहीं किया है। अमन आंशी के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? आंशी ने डरते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे कर देगा। तुम्हें अभी भी फीवर है, रेस्ट करो। आंशी ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आई प्रॉमिस, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। इस बार मेरी बात मान लो, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। आई ट्रस्ट यू, बोलते हुए आंशी बिस्तर से उठी। आंशी को फीवर था, फिर भी बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। आंशी ने कपड़े चेंज नहीं किए, बस अपने बाल सही किए और चेहरे पर हल्का मेकअप किया ताकि वो बीमार ना लगे। उसने पहले से व्हाइट कलर का नी लेंथ ड्रेस पहना था। आंशी खुद से विधिक का सामना करने की पहल कर रही थी, इसलिए अमन ने उसे ज्यादा नहीं टोका। लगभग 15 मिनट बाद वो दोनों नीचे आर्टिस्टिक के मीटिंग रूम में विधिक के आने का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू।